विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हा देवी का सुधर गद गदयाच वाचा जाति निपत्त भूवि दंडवत उद्भटार्ती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निज गणे गणनं। अंगुश्यामली सताभिरभितो मंदे कृतेंदी वरं जद्दंजा विदरोति सां विदधतं पट्टं वरश्चरत्या बिन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनीशितोज्ज्वलभुजं ज्ञानीं दामोदरं भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै कृप्तास्त्रिकामादितरङ्गमध्यै कृपामयी स्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणान्। गुरवे कौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्मानं हेतुमन्दं कृपां बुधिर्जातर दुःख दुःखी सनातनस्तं प्रभुमास्तिनः। एकैतन्न मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। यन्त्राव्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकर्तर्याद्भाव पुत्रेति तन्नयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतविदयं मुनिमान्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधीत्वं मां ते। मैंने एक वंदना में श्लोक पाठ किया सनातन गोस्वामी जी का प्रणाम। इसमें बतला रहे हैं वही राज्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायन सनातन गोस्वामी दया के समुद्र है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी सारी दया उनके हृदय में उत्पत्ति की थी। जितनी भी चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाएं हैं उन्होंने अनुग्रह पूर्वक सनातन गोस्वामी के हृदय में सबको उन्होंने भर दिया, इसलिए सनातन गोस्वामी बड़े दयालु जैसे दयालु चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, जगत के जीवों पर विशेष करुणा करने के लिए जो तुच्छ जीव जो साधन भजन भी नहीं करते ऐसे बहुत रूप जीवों को सरल से सरल सहज से सहज सभी लोग इसको अंगीकार कर सकें, जिसमें पैसा खर्च न हो, जिसमें बुद्धि खर्च न हो, जिसमें दिमाग खर्च न हो, जिसमें कोई अड़चन न आए, सभी लोग सभी जाति के लोग स्त्रियां बूढ़े बालक पशु पक्षी तीन गुलमलता तक भी इसको ग्रहण कर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही पधारे थे, वो भी राधा जी का भाव लेकर के और उनके अंग कांति भाव किस ले लिया। स्त्रियों में दया कितने राधा जी दयालुता की सीमा है, इसलिए विशेष करके उनका हृदय दिया, उनकी भावना को दिया। कृष्ण की शिक्षा कृष्ण का आचरण हम नहीं ग्रहण कर सकते, कभी नहीं कर सकते, किंतु राधा जी का कृष्ण के प्रति जो आचरण और प्रेम और सेवा है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में कृष्ण ने राधा जी के भाव और कांति को ग्रहण करके गलत और सारी दया सारी शिक्षा सनातन गोस्वामी जी को वाराणसी में दी। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर आप तो दया के थे और मैं कहता हूँ अनुभव आंख तो ठीक है तो अपने को अंध कर रहे हैं। इन आंखों से ये अंदर की आत्मा और हमारे मन की भावना को आप लोग ना देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। आप लोगों के अंदर में क्या बुराई और अच्छाई है आंख से नहीं दिखेगी। इसके आचरण से हो सकता है कि हम लोग की अनुमान लगा सकते तो इन आंखों से आत्मा नहीं दिखती है भगवान भी नहीं दिखते हैं भाव ही नहीं दिखते विशेष रूप से भक्ति का उस विषय में नए अंधा हूँ और अनभिक्षु मैं आपकी दया भी नहीं चाहता। भगवान की दया भक्तों की दया संतों की दया लोग नहीं चाहते वो अपने मनमौजी ढंग से उस दया को चाहते हैं जिससे उनका उपकार हो और न हो अपने अपनी भावना से वो सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं आपकी दया को लेने में भी उत्सुक था किंतु आप ऐसे दयालु हैं जो मैं नहीं चाहता था जैसे छोटा बालक कोई चीज देने पर दूध भी देने पर वो नहीं लेता है रोता है जबरदस्ती उसको देने पर धीरे धीरे उसको लेता है। एक बछड़ा है उसके पेट में कीड़ा पड़ गया और उसको मिल के पत्ते पीस कर दिए जाए रस तो वो ठीक हो सकता है दवा कड़वी है वो लेना नहीं चाहता। एक बांस के बांस का बनाया और उसमें थोड़ा सा पतला सामने का कर दिया उसमें भर दिया है और बछड़े का गला पकड़ कर ऊंचा कर दिया उसमें ढाल दिया जबरदस्त और जब तक वो निगल नहीं गया तब तक पकड़े रखा। वैसे हम लोग परमार्थ के विषय में अंधे हैं। वो कह रहे हैं रघुनाथ दास मैं अंधा अनुभिक्षु मैं चाहता नहीं था किंतु सनातन गोस्वामी ने जोर पूर्वक वैराग्य रस से युक्त भक्ति रस हमारे मुख में डाल दिया हमारे कानों में डाल दिया। अब मैं उनकी दया को समझता हूँ कि उनकी दया क्या है। हम लोग का भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही दया देने के लिए उत्सुक कहाँ कहाँ गए दक्षिण भारत में उत्तर भारत में पूरब भारत में कहाँ नहीं गए। मैं सस्ते रूप में मैं जो दया की झोली ले आया हूँ एक फल लाया हूँ मैं देखने के लिए वाराणसी में आया हूँ। जब ये लोग नहीं लेते तो कम मूल्य में ही बेच दूंगा केवल श्रद्धा भी यदि होगी तभी मैं दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि माल अपना नौ लौट आकर के ले जाऊ और किस वक्त भी नहीं लेंगे तो माल अपना लौटा ले जाऊंगी। इसको थोड़ी सी भी श्रद्धा है ये दे सकते और उनके परिकर हो बड़े तैयारी होंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है लोग दुख को दूर करने के लिए और सुख को पाने के लिए सभी लोग प्रयत्न कर कर्मणि आरोहमानानं दुःखात्तै सुखाय च पत्ते बात विपर्यासं नित्यनिचारिणां मृणा। ये कह रहे हैं कविंद्र को नेमी महाराज को नव जगेंद्र का बुला रहे हैं कभी हबी और सब कितने हैं। कह रहे हैं संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख की इच्छा नहीं करता और उसके लिए चेष्टा नहीं करता। सभी प्राणी अपने अपने बुद्धि और शारीरिक परिश्रम से सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग सुख पाएं और हमारा दुख दूर हो जाए, समस्त प्राणी चाहते। किंतु इसके लिए चेष्टा करने पर भी अभी राष्ट्र संघ के माध्यम से समस्त देशों के लोग एकत्रित हो रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं या लड़ाइयां रुक जाए, सभी लोग शांति से रहें, सुख पूर्वक रहें, कोई दुखी न रहे। किंतु होता है उल्टा, हो नहीं रहा है। कोई समझते हैं इस चीज को? भारतवर्ष की स्थिति लीजिए, सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग सुखी रहें और समस्या और जटिल से जटिलतर और जटिलतम होती चली चली जा रही है। क्यों होती जा रही है इसके लिए वो बतला रहे हैं। जो यथार्थ में सुख है और किस रीति से वो पाया जा सकता है लोग समझ नहीं पाते। ये तरीका नहीं है, उल्टा परिणाम हो जाता और दुख हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आए, उन्होंने देखा क्या समय कुछ विपरीतता चल रहा है। समस्या क्या चीज है? खाने की कमी नहीं है, रुपये की भी कमी नहीं है, आदमी की कमी नहीं है, कमी तो किसी चीज की नहीं है, बुद्धि भी बड़ी है, मेडिकल इतनी उन्नति हुई है कि मेरिट में पुराने को बदलकर प्रत्यारोपण कर देते हैं दिमाग, हृदय गड़बड़ हो गया था, हृदय में भी प्रत्यारोपण करने की विधियां सब आ गई। एक रसोई घर से लेकर और एकदम लोकसभा तक कैसी कैसी सब उन्नति हुई है, लोग चमत्कृत हो उठते हैं। बहुत किंतु एक चीज की साथ ही साथ में विडंबना की है, वो क्या? एक तो इन आधुनिक सब इन्वेंशन से जो दूर था वो निकट आ गया, एक गुलाब दूसरे के निकट में मुट्ठी में जैसे आया। पहले लोग सारा जीवन चल करके भी जिस जगह में दूर पर उतने दूर में नहीं आ सकते थे, अब 500 घंटे के अंदर में कहां अमेरिका, कहां इंग्लैंड और कहां उत्तरी ध्रुव, कहां दक्षिणी ध्रुव, वहां पर आप भी पहुंच जाते हैं। कम्युनिकेशन की कितनी उन्नति हुई, सब विषय में ही उन्नति आश्चर्यजनक की हुई। लोग एक दूसरे के निकट आ गए, ये बात तो ठीक है, किंतु सब लोगों में परस्पर संघर्ष होने पर भी, सब निकट आने पर भी हुआ क्या? दो दिल एक परस्पर नहीं मिले, दिल की दूरी अलग हो गई। आप लोग सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, दो दिल नहीं मिले। जगत दुनिया आई, कलकत्ते में हम देखते हैं बड़ी बड़ी भीड़ होती है, इंग्लैंड और लंदन इत्यादि की या अमेरिका की मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं गया, किंतु अंततः कलकत्ते में देखता हूँ इतनी भीड़ कि रोज 10-20-50 घटनाएं होती हैं। किंतु जब घटना हो जाती है तो कोई एक आदमी जो गिर गया उसको उठाने वाला, सहारा देने वाला, लाखों आदमी उसमें चल रहे हैं, एक आदमी के एक आदमी मार दिया, वहां मारने पर थोड़ी सी सनसनी फैली, ठीक जैसा का तैसा, कोई सहारा देने वाला, पूछने वाला नहीं कि क्या हुआ। दुख में कोई सहानुभूति देने वाला नहीं, ये तो रही समाज की बात। अपने घर में भी पहले पति और पत्नी का हृदय जो निकट रहता था बैलेंस बैलेंस अलग रहने लगा दो ना? क्यों? क्योंकि हृदय की दूरी हो गई। सबके लिए नहीं कह रहा किसको, अधिकांश रूप में ऐसे स्त्री अलग बिजनेस कर रही है, पति अलग बिजनेस करता है, पुत्रों पर कन्याओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो धमकी देती है, ये धमकी देते हैं हम नहीं रहेंगे इस साथ, हम भी काम करते हैं आप भी काम करते हैं, पिता और पुत्र की दूरी और बढ़ गई है। जहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ पिता से मिलती नहीं, अरे घर में तो रहता है दो चार घंटे रहता है, बाहर ना बाहर की हाव भाव ऐसी बन गई। और वो बिचारी उनका विचार दास्यानी थी और पुराना विचार उनका हो गया और हम अब नए हो रहे हैं, अब नया अब पुराना दोनों का बोतल में एक बोतल में नहीं चलता, दुख की ये समस्या है। आत्मा की जो खुराक थी, आत्मा की खुराक समझ रहे हैं ना, आत्मा की वो खत्म हो गई और शरीर का खुराक बढ़ गया, शरीर का वैभव, शरीर का मंडन, शरीर का श्रृंगार और शरीर की भूख काम बढ़ गए और आत्मा की भूख धीरे 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 नहीं कुछ मिलने से वो शांत होकर के आत्मा दुर्बल हो गई और शरीर जो तामसिक तामसिक भावनाएं बढ़ गई। ये जीत की समस्या है। प्रेम देखने को कहीं नहीं मिलता, बहुत कम गिरले ही प्रेम मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा ये तो बड़ी विकट समस्या है, इसलिए उस प्रेम का प्रचार करने के लिए ये जीव भगवान से प्रेम करे, सब में प्रीति रहे, सभी लोग परमात्मा को समझे, शुद्र स्वार्थ में न रहे। आदमी अपने अपने एक व्यक्ति के वैयक्तिक स्वार्थ में सभी लग गए, सामूहिक स्वार्थ की बात कोई कल्पना नहीं करता। आज हमारे राष्ट्र को देख लीजिए, विश्व के राष्ट्र को देख लीजिए, सर्वत्र एक ही दशा है। इसलिए चैतन्य महापुरुष जी ने क्या किया, नाम के माध्यम से उन्होंने प्रेम की माला सबके गले में पहनाने की चेष्टा। नाम एक बिना पैसे का साधन है, कोई भी व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो नया हो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो क्रिश्चियन हो, वो भगवान का नाम कर सकता है। इससे नहीं कि दरिद्र लोगों के साथ में मैं बैठ करके मैं धनी हूं इसलिए भगवान का नाम नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। पैसा खर्च होगा नाम में, पैसे खर्चे का कोई प्रश्न नहीं। आप लोग यहाँ पर सब आए हैं, अब ये 1,00,000 रुपए का प्रसाद बांट दें तो वो दूसरी बात है। कोई तुलसी का पत्ता भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेगा बस उसी के साथ, कोई भी उसके लिए नहीं आता, वो नाम के लिए आता है, इसलिए इसमें खर्च नहीं। बुद्धि की विशेष जरूरत है नाम करने में, कोई भी बुद्धि की जरूरत नहीं। हंसते बस बैठते उठते चलते फिरते श्रद्धा हो न हो किसी रूप में भगवान का नाम लिया जाए, ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोगों में परस्पर प्रीति बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम होगा। एक बात अच्छी तरह से समझेंगे, यह प्रेम जीव का जीव के प्रति नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जीवों के प्रति प्रेम किया जाए, किंतु यह सिद्धांत एकदम संपूर्ण रूप से गलत है। जो प्रेम नहीं जानते हैं इसलिए वैसा कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दलील देते हैं कि जीवों के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो जीवों के प्रति यदि प्रेम है तो वो लोग देखते हैं क्या करते हैं, स्वयं मुर्गी को काटते हैं और खाते हैं। तो जीव को प्रेम कहां रहा? सांप से प्रेम करो तो या बाघ से, यह संभव है, खा जाएगा। इसलिए प्रेम न करने जाओ सबसे। यह प्रेम केवल मात्र भगवान के प्रति होनी चाहिए, उनके प्रति दया का भाव हो, उनके प्रति मैत्री का भाव हो सकता है, उसके माध्यम से प्रीति उनके प्रति हो। यह प्रेम केवल मात्र भगवान के प्रति होगा। यदि वो जीव के प्रति करेगा तो वो काम भावना हो जाए। काम में और प्रेम में अंतर है। प्रेम निस्वार्थ अपने सर्वस्व दे देना पड़ता है। ये भगवान के चरणों के लिए ही संभव है, क्योंकि हम उनके अंत हैं। जीव के लिए ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए और जीवों के प्रति प्रीति भरी मैत्री, सेवा भरी मैत्री और दया पूर्वक मैत्री। और जो लोग बहिर्मुख हैं उनको इसलिए उनसे कोई व्यवहार न रखते कि व्यवहार करने में आपको गड़बड़ी होती है, इसलिए उनसे सावधान रहो। और संभव आप में शक्ति है तो उनके प्रति भी व्यवहार ऐसा कीजिए, यदि आप सुधार सकते हैं तो। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आप लोगों को बताया, इसमें यदि आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय में दुधुमंत खान नाम के एक जमींदार हो गए। चैतन्य चैतामृत में या चित्री चैतन्य भागवत में ये उपाख्यान है। जब चैतन्य महाप्रभु के समय में हरिदास ठाकुर जी हुए, वो मुसलमान कुल में पैदा हुए और बचपन से उनकी हरिनाम में रुचि लग गई। 3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख नाम उच्च करके उच्चारण करके करते और 2 लाख नाम ऐसा करते जो मन ही मन में करते, अपने सुन सकते हैं इस रूप में करते, या मन ही मन करते या अपने आप सुन सके इस रूप में करते। कितना नाम करना सहज नहीं है, खाना पीना और अपना स्नान और सब दैनंदिन क्रिया करते हुए और ये 3 लाख नाम करना और मन लगा करके, मन कहीं नहीं जाए, बड़ा भारी कठिन। इसी ऊर्जा के कारण हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक बेचा को नियुक्त किया था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। किंतु 3 रात वो उनका नाम उच्चारण सुन करके एकदम परम साध्वी परम संत बन गई और उसके दर्शन के लिए बड़े बड़े साधु लोग उनके यहाँ जाने लगे। इतनी बड़ी वो हो गई। हरिदास ठाकुर ने कहा तुम है, मैं तो चला जाता पहले दिन, तुम आई तभी, किंतु हरिनाम की महिमा तुमको दिखलाना था इसलिए मैं रह गई, अब तुम इसी स्थान पर आ जाओ और ये स्थान मैंने तुमको दे दिया। घर में तुमने जितने रुपए कमाए हैं वो सबको दान, जिसको इच्छा उसको दे आओ, और केवल यही कपड़ा जो तुम पहनी है साधारण इसी को पहन करके आ जाओ। बस वो सब कुछ दान देकर घर का सब कुछ कपड़ा लत्ता रुपया पैसा आभूषण सब कुछ देकर के और उस स्थान में आ गए। न कि ये तुलसी का चबूतरा है, बस किसी की रोज तुम परिक्रमा करना, पानी लेना और उसकी सेवा करना और तुम हरिनाम करो। खाने पीने की चिंता मत करना, वो तुम्हारे पास में बहुत आएगा, किंतु तुम उतना ही रखना जितना तुमको जरूरत है और बाकी लौटा देना। हरिदास ठाकुर उसको रख करके और चले गए और वो हरिनाम करने लगे। बड़े बड़े लोगों ने सुना और सभी लोग उसके दर्शन करने की मेहनत, बड़े बड़े संत लोग थे, वैष्णव लोग थे, सभी लोग आने लगे और कुछ कुछ हाथों में फल मूल जैसा जिसका है वो लेकर के आए। वो उसमें जितनी जरूरत होती उतनी रख लेती और बाकी सब लौटा देती नहीं रखती और निष्किंचन दीन ही होकर के वो नाम करने लगी। किस तरह से बंगाल भर में उनका आदर हो गया। वो जो रामचंद्र खान था इस पाप के कारण, संतों का विरोधी होने के कारण, महाप्रभु का विरोधी होने के कारण वो कुछ और बढ़ गया। वो सुबुद्धि राय का है, तो सुबुद्धि राय के मैं दूसरी में चला गया। सुबुद्धि राय नाम के एक जमींदार थे, वो हुसैन का बादशाह उनके यहाँ पहले कर राज कर्मचारी था, उनके यहाँ काम करता था। उसको किसी चीज का ठीका दिया, ये काम करना है, ये जमींदारी तुमको देते हैं, उसमें से शुल्क लेकर और फिर हमको इसमें से 1,00,000 रुपया दे दें और बाकी तुम्हारा रुपया रहेगा। वो 1,00,000 के बदले में 10,00,000 रुपया उठाया और इनको 1 पैसा नहीं दिया और सभी खा गया। उन्होंने उसको बुलाया, कहा कि तुम सब रुपये खा गए और तुमने हमको दिया नहीं, उसका कुछ बिगड़े और उसको राज्य से हटाया नहीं नौकरी से, किंतु उसको कोड़े लगवा दिए और कोड़े लगने से उसको घाव हो गया, फिर कुछ दिनों में सूख गया। बाई चांस वही अब बादशाह बना, इनके ऊपर वाला भी चला, इसके ऊपर भी हो गया। ये तो उसके छोटे राजा थे और वो उनसे ऊपर का हो गया। अब वो जो बादशाह हो गया बंगाल का, तो एक दिन स्नान कर रहा था और उसकी बेगम उसको स्नान करा रही थी, तो स्नान कराते कराते उसने देखा कि पीठ में दाग है। तो उसने कहा जी आपके पीठ में ऐसा दाग क्यों हो गया, तो तुमको कोई जरूरत नहीं, तो हम जल्दी से स्नान करा दो, हम चले। उतारने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार जिद करने लगी कि बतला दीजिए आपको कैसे दाग है। अंत में बाध्य हो करके उनको बतला, वो कहा उसने यदि नहीं कहेंगे तो अभी मैं मरती हूँ विष खा करके, तो विष मरने से अच्छा तुमको बतला दे। उन्होंने बताया कि जब मैं नौकरी करता था पहले इनके यहाँ से बुद्धि राय थी, तो इन्होंने मालगुजारी वसूल करने के बाद में मैं सब खा गया, इसलिए उन्होंने हमको दंड स्वरूप 1 कुड़ा मरवाया था और फिर बाद में हमको क्षमा कर दिया और उसी काम में लगा दिया और उसके बाद ही मैं किसी प्रकार से बादशाह हो गया, इसलिए इसी सहायता से बादशाह हुआ। उसने कहा जैसे घोड़ा मरवाए अब इसका तो प्राण आपको लेना पड़ेगा, प्राण दंड देना पड़ेगा, किसी प्रकार से इनको मारना है, बहुत एकदम जीत कर। अंत में वो प्राण लेने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने उनको बुलाया और कहा जी अच्छा एक बात करो। उन्होंने बदने में पानी लिया और लेकर के कुछ किया और उस पानी को उनको पिला दिया, मुख में लगाकर पिया तो उन्होंने नहीं मुख में लगा दिया। अब उस समय की रीति ऐसी थी यदि कोई मुसलमानों का पानी छुआ हुआ पी लिया तो वो मुसलमान हो गया, अब उसके लिए प्रायश्चित करके तब हिंदू होना बड़ा भारी कठिन, अब उनको तो मुसलमान बना दिया। अब ये वहां से चले वाराणसी गए, भाई मैं तो हमको तो मुसलमानों ने पानी फैला दिया और मैं तो मेरी जाति चली गई, अब कैसे हमारी जाति बनी। सुना कि हाँ एक तरह से बन सकती, 1 किलो घी आग में खौलाया जाए और जब वो खोलने लगे तो उसको उस बर्तन से लेकर के आपके मुख में डाल दिया जाए तो आप शुद्ध हो सकते हैं। मतलब क्या कहते
हैं,
फिर गए मिथिला में, वहां के पंडितों से जाकर के कहा, उन्होंने कहा हाँ आप शुद्ध हो सकते हैं यदि लाल एक लोहा गला दिया जाए और गला करके आपके मुख में दे दिया जाए, लोहा गला हुआ फॉरन हीट से भी गर्म करके, तो आप शुद्ध हो सकते हैं, मतलब ये आप तो मर गया, बिना मरे हुए शुद्धि नहीं हो सकती। इसी तरह से जहां जहां भी गए किसी ने उनको शुद्ध करने को नहीं चाहिए।
अंत में बड़े दुखी थे। चैतन्य महाप्रभु उस समय वाराणसी के लिए आ रहे थे या वहीं थे, उनके पास में गए। महाप्रभु जी को जाकर के अपनी बात बतलाई। उन्होंने कहा आत्मा हिंदू और मुसलमान ये सबसे ऊपर, आत्मा कभी भी न हिंदू है न मुसलमान है न क्रिश्चियन है न ईसाई है न बौद्ध, उसका केवल यही मतलब है भगवान का सेवा करना। यथार्थ में तुम कोई अपवित्र ही नहीं हुआ, तुम शुद्ध ही है। तुम्हारे मन में उस पानी पीने से अहंकार बढ़ा न दीनता आई, तो दीनता आई अहंकार नहीं आया ना, तो नहीं तो तुम्हारा मन कैसे मलिन था। तुम्हारे अंदर में क्रोध हुआ नहीं, तो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जिससे मन मलिन होता है ये कुछ हुआ तो नहीं, तो तुम्हारा मन कहाँ मलिन हुआ, तुम्हारी जाति कहाँ गई, तुम्हारी तो ठीक है। तुम एक बात करो बोलो तो। तुमने कहा जब बतलाइए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोलो बस, बोला उसने और जो देखा कि तुम अब संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, तुम्हारे अंदर में कोई भी अब कुछ नहीं है, सब दोषों से समस्त पापों से सबसे तुम दूर हो। अब यहाँ से उस समाज में मत जाओ जो तुमको इस प्रकार से कहा, अब यहाँ से तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में जाकर के वहां पर बहुत एक बड़ा मंदिर है कृष्ण की जन्मभूमि पर, उसमें बड़ा भारी विराट मंदिर था, उसी को औरंगजेब ने आजकल तोड़वा करके उसी के गर्वे और मिट्टी से और चीनी और ईंटों से मस्जिद खड़ा कर दिया, जैसे कि वाराणसी में श्री मंदिर और अयोध्या में राम का, वहां पर मथुरा में भी ऐसी सब बड़ा भारी विशाल मंदिर। वहां जाना और उसमें पर देश विदेशों से संत लोग आते हैं, गृहस्थ भक्त लोग आते हैं भगवान का भजन करने के लिए और उनका दर्शन करने के लिए। तुम निचली सीढ़ी पर बैठना और पहले दर्शन करके आ करके और यही हरि नाम करता रहना, और निचली सीढ़ी पर सब लोग जब जाएंगे उनके चरणों की धूली लेकर के अपने सिर पर लगाए और तुमको जो 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 एक एक पैसे दे देंगे, मैं जमींदार था तुम उसको टैक्स मत देना, जो जो पैसे जोड़ लेते हैं ले लेना, अपने लिए मत लेना। जो दूर दूर से संत लोग आएंगे, वैष्णव आएंगे, निधि आएंगे, जिनको कुछ जरूरत है उनके खाने पीने रोटी और तेल और सब चीजों की व्यवस्था के लिए तुम उनको दे दो। अब तुम घर में माधुकरी मांग करके और किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करके बस हरे कृष्ण ये करता रहना, और तुमको और कोई साधन इत्यादि की जरूरत नहीं। इसी नाम के साधन से तुमको जो कुछ भी मिलना है इस जगत में पर जगत में वो सब कुछ साध्य साधन देखी चू सको हरि नाम मिली दे सको, हरि नाम के द्वारा सभी कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उनको दिखता है। हरिदास ठाकुर को तो जानते ही हैं। हरिदास ठाकुर जी से एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, प्रभु मैं देखता हूँ कि जगत में बड़े कुकर्मी लोग भी अच्छे लोग हैं कम हैं, कुकर्मी लोगों की संख्या बुरे कर्म करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं, परस्पर लड़ते हैं जंगली जानवरों जैसे, वो तो अपने पंजों से नोचते बकोचते हैं और ये क्या करते हैं, एक अटल बम हाइड्रोजन बम ऐसा फेंकेंगे जो कुरिशिमा और जापान का वो सब क्या है, और इराक सिरा को देखो मैंने कुछ दिनों में ठंडा कर दिया। ऐसे लड़ते हैं लाखों लोगों का प्राण बिना कारण ही ले लेंगे, ऐसे ये जंगली से भी जंगली है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है जो उनका उद्धार हो। पशु पक्षी भी ऐसे हैं त्रिलता भी ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, किंतु उनको प्राण है। जगत में दो प्रकार के वस्तुएं हैं, एक जड़ और एक जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं? जिसमें अनुभव की शक्ति है और दुख सुख की संवेदना है, दुख सुख का अनुभव कर सकता है और स्वतंत्र इच्छा शक्ति हो, यही बात की है। दो प्रकार के वस्तुएं हैं, एक जड़ एक चेतन, जिससे प्री नोइंग एंड विलिंग हो, स्वतंत्र इच्छा शक्ति और दुख सुख की अनुभूति जिसमें हो, वो तो चेतन। इच्छा शक्ति माने क्या? मैं चलूंगा, मैं देखूंगा, मैं ये खाऊंगा, मुझे इससे दुख हो रहा है, मुझे सुख रहा है, ये सब चीजें जो हैं, जिसमें प्री स्वतंत्र इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति है, उसको कहते हैं चेतन या चिन्मय, और जिनमें इन चीजों का अभाव है उसको कहते हैं जड़। ये जड़ है, इसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति नहीं है। हमारे अंदर में सुख दुख की अनुभूति और अनुभव भी है, इच्छा भी, किंतु इस शरीर में नहीं। शरीर के अंदर में एक आत्मा नामक की एक वस्तु है, उसके अंदर वो चेतन है। ये शरीर चेतन नहीं है, मन भी चेतन नहीं है, वो इससे सर्वथा पृथक है। हम कान से सुनते हैं किंतु कान नहीं सुनता, आत्मा सुनती। हम पैर से चलते हैं, पैर नहीं चलता, हम आत्मा के वजह से चलते हैं। मन के द्वारा हम अनुभव करते हैं ऐसा सोचते हैं, किंतु मन के द्वारा अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा इसके अंदर में है, इसलिए आत्मा अनुभव, आत्मा चेतन है और ये सब चीज जड़। और समस्त चेतनों की मूल चेतन है वह है परमात्मा, वह है परमात्मा। इसी आत्मा का परमात्मा से जबकि मिलन होगा और उसके प्रति इसकी सेवा और स्थिति होगी, तभी वो सुखी रह सकता है। अन्यथा किसी भी उपाय से संसार के जितने भी कार्य हैं वो सुखी नहीं रह सकता है। मैं किस विषय पर भी बोल रहा था, आरंभ किया था, उनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी ने पूछा, तो वो कहते हैं जैसे ये घास है, पेड़ पौधे हैं, वो जड़ है कि चेतन है? उसका ऊपरी आकार तो है जड़, किंतु उसके भीतर में वैसा ही चेतन है जैसा हमारे भीतर में। ये आजकल लोग अंडे खाते हैं, अंडे भी हमारे जैसे ही चेतनता है, उसमें भी प्राणी है, हिरण को मार करके खा जाते हैं, गायों को मार करके देशों में विदेशों में खाते हैं, उसके अंदर भी हमारे जैसे ही, पौधों में भी वैसे ही आत्मा है। तो इन लोगों का उद्धार कैसे हो जो पेड़ पौधों में आत्मा है? महाप्रभु जी ने तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी ने बतलाया, उच्च संकेतन ताते करीला प्रचार, शीर चौर जीवर खंडाई और संसार। आपने जो उच्च संकेतन प्रचार किया है, इसके द्वारा शीर और चर जितने भी प्राणी हैं, जड़ और जंगम, चलने वाले और जो शीर रहने वाले जितने भी प्राणी, जिनमें चेतनता है, अनुभव शक्ति है, वो सुनते हैं, पेड़ भी बात सुनते हैं, समझते हैं। एक कुठार उस पर लगा दीजिए, सारा पेड़ कांप जाएगा। उनमें भी चेतनता है, उपलब्धियां है, किंतु वो व्यक्त हम लोगों के सामने नहीं कर सकते, अपने जातियों में वो व्यक्त कर सकते। जैसे बंदर है, बंदर की बोली है, उनको अभी मारने जाइए, वो ऐसे किलकारी मारेंगे जो लाखों बंदर एकत्र हो जाए, और आपको चलना फिरना कभी मुश्किल कर देंगे। चींटियों में कितनी एकता होती है, लाखों चींटियां एक तरफ से चलती हैं, इस तरह से पशु पक्षियों में भी बुद्धि होती है। कुछ तो ऐसे प्राणी हैं जो भविष्य की बातें जान लेते हैं, कुत्ते हाथियां ये सब समझ लेते हैं, सियाल ये समझ जाते हैं ये मरने वाला है, बस उसके पहले ही रोना आरंभ कर दें, वो समझ जाते हैं। हंस में तो ऐसी बुद्धि है, पानी और दूध को अलग अलग कर देंगे, हमारे लिए जंत्र चाहिए और न जाने क्या क्या चाहिए, उनमें भी बुद्धि होता है। कुत्ते ऐसे हैं, बीच भरी कोई चीज दे दो तो सहज में वो नहीं खाएंगे, वो सुन करके समझ सकते हैं, हम लोगों के लिए जंत्र चाहिए, इसलिए उन लोगों में भी कान को सबको भगवान ने दिया है। उस संकीर्तन इसलिए आपने प्रचार किया जो चलते फिरते में जो हरिनाम करते हुए चल रहे हैं उनके कानों में पड़ने से वहीं से उनका उद्धार। चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन पूरी धाम से, चलते चलते जब गंभीर जंगल में आए, पशु पक्षी सांप बाघ हाथी मृग झुंड के झुंड विचर रहे थे उस जंगल, और जो प्रेम से उन्होंने भूमि लगाई हरे कृष्ण की, बस समस्त यही कृष्ण 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 कहने लगे। हाथी दोनों पैरों पर टेक दिया आपने को, आंसू से हरे कृष्ण अपनी भाषा में बोलने लगे, बाघ बोलने लगे, मृग बोले, एक साथ में सभी चलने लगे। हरष्टानंद नाम के एक महाप्रभु जी के परिकर हो गए, महाप्रभु जी से श्यामानंद प्रभु हुए हैं, श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य ये थे। ये एक बार किसी सरोवर में जंगल में स्नान कर रहे थे तो 10-15-20 हाथियों का एक झुंड आया, और आते ही पर सकता उन्होंने पानी लिया और हरे कृष्ण कह करके और उनके मस्तकों को मारा, बस एकदम सुर उठा करके सभी एकदम खड़े हो गए और हरे कृष्ण करने लगे और आंख से पानी की धारा चलने लगे, उन्होंने खूब तकलीफ किया। ऐसा सब देखा जाता है, पशु पक्षी भी कीट पतंग भी, हम चल रहे हैं टहलने जा रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे नहीं हरि नाम करते, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अब वहाँ पर जितने पेड़ हैं पौधे हैं घास है, विशेष करके गायें और कुछ जानवर ऐसे हैं यदि बजाते हुए कुछ हरे कृष्ण करें ना तो कान खड़ा करके ऐसा कर करके करते हैं और सुनते हैं उन्हें, उधर गिदड़ करके दौड़ने लगते हैं। कुछ कुत्तों को हमने देखा है जहाँ कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मार करके भगा दीजिए तभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे नवदीप धाम की परिक्रमा में लाखों लोग जब परिक्रमा करते हैं उनके साथ में कुछ कुत्ते हो जाते हैं, प्रसाद दिया तो खाएंगे, एकादशी के दिन प्रसाद भी जाएगा तो नहीं खाएंगे, कैसे समझ जाते हैं। ये शिवानंद सेन नाम के एक भक्त थे, वो प्रति वर्ष में जाते थे रथ यात्रा के समय में पूरी धाम में, तो जिसमें जा रहे थे सैकड़ों लोग और उस समय में कुत्ता उनके पीछे लग गया और वो कुत्ता उनके साथ में प्रसाद देते थे, एकादशी के दिन नहीं खाता और किसी कारण से उसको नदी से पार नहीं कराया, अपने लोग तो पार हो गए और उसको कुछ डांट दिया किसी ने, वो आगे चला गया महाप्रभु उस पास पुरी में, ये लोग रह गए पीछे और वो जा करके ओ करता हुआ बस उनके चरणों में एकदम प्राण तोड़ दिया। महाप्रभु ने कहा ये कोई महापुरुष है, कुछ आदमी बाकी रह गया और ये हरिनाम करता करता हुआ यहाँ आया, अब इसकी सदगति हो गई, फिर उसका उसी प्रकार से वैष्णव के अनुसार से उसको प्रसाद के द्वारा सबको दे करके उसका साध भी करा दिया। तो ये उच्च संकीर्तन के लिए कुछ लोग कहते हैं आपका भगवान क्या बहरा है, जो को जो सलाम कर रहे चिल्ला करके चिल्लाने की क्या जरूरत है, विशेष करके वैष्णव लोग महाप्रभु के परिकर या उनके रास्ते पर जो चल रहे हैं मृदंग जरूरी रख लें। और कुछ करताल रख नहीं, मृदंग नहीं भया तो करताल रख, और दस पांच मिल करके और जोर से हरिनाम करते हुए रास्ते पे चलेंगे, इधर चलेंगे उधर जाएंगे, उनका काम ही यही है। जो कहेंगे तुम्हारे भगवान क्या बारे हैं, ये सुनते नहीं है क्या, मन मन में नहीं समझेंगे, कहते ये पति का आदेश है इसलिए हम उसका पालन कर, ये प्रभु स्वयं करते हैं कि हमारा नाम उच्चारण करके कहो, इसलिए हम करते हैं, हमारा भगवान न तो बहरा है न कुछ है, हम उसकी कृति के लिए वो जैसा कहता वैसा ही हम करते हैं। इसलिए उच्च संकीर्तन की महिमा मणिमन जो करते हैं उससे हजार गुण अधिक, मणिमन जो नाम करता है उससे उपांशु जब श्रेष्ठ है। उपांशु माने क्या, जरा हरे कृष्ण अपने सुनने, उसको उपांशु जप करते हैं, और इस जप से हरे कृष्ण उच्चारण करके लाउडिक और जोर से करने से उसका हजार गुना से हजार गुना और भी, अपना भी होता है दूसरे का भी होता है। जप करने से अपना कल्याण होगा और कीर्तन करने से लोग जो सुनेंगे लाखों का कल्याण होगा, इसलिए उस संकीर्तन की कहते हैं महाप्रभु ने विधि बने, और उसका अपने भक्तों के द्वारा सर्वत्र के प्रचार किया, और इसी नाम के माध्यम से उन्होंने प्रेम का प्रचार किया समस्त विश्व में। आज उन्हीं की कृपा से आज देखे विश्व में सर्वत्र ही नाम की, रशिया जैसे कंट्री में भी हरि नाम का प्रचार, चीन में भी धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, और अमेरिका और ब्रिटेन तो वो आस्तिक देश है, वहां पर तो होगा नहीं, वहां पर तो लोग करते ही है, इसलिए नाम की महिमा सबक प्रचार है, कहाँ नहीं मंदिर है, कहाँ नहीं भागवत और गीता इत्यादि का संश्लेषण किया है। आज मेरी इच्छा थी मैं आप लोगों को चैतन्य महापुरुष के दृष्टि से गीता का क्या तात्पर्य है उसके दो चार श्लोकों की व्याख्या करके आप, तो मैं थोड़ा सा नाम की तरफ में बढ़ गया, मैं कुछ गीता के ऊपर में थोड़े से एक विहंगम दृष्टि से विचार कर, गीता का इसकी तात्पर्य वही नाम संकीर्तन से है, उसमें भी नाम संकीर्तन की महिमा है। कलयुग में आप कुछ भी साधन कीजिए, मना तो नहीं, किंतु नाम संकीर्तन के माध्यम से कीजिए, आसन भी करना है तो नाम कीर्तन करते हुए, यदि ध्यान भी करना है तो नाम के माध्यम से, यदि और कुछ करना है साधन तो नाम के महिमा से, नाम को छोड़ करके आपका कोई भी साधन कार्य नहीं करेगा, फल नहीं देगा, इसलिए नाम संकीर्तन सहज अन्य आश्रित में सब समय करना चाहिए। मान लें कि आपको भोर की कोई विषय की चिंता है, आप उस समय दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, ध्यान हो सकता है उस समय नहीं होगा, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, किंतु हरिनाम कीर्तन यह हो आपके चिंताओं से भी छुटकारा हो जाएगा, जो चाहे नाम संकीर्तन करने लग जाए बस देखे वो चिंता दूर हो जाएगी। इसलिए नाम संकीर्तन को सबसे बड़ी कलयुग का सबसे प्रधान इसी को कहा गया है। कुछ लोग ध्यान इत्यादि को बतलाते हैं किंतु ध्यान होना अर्चन करना, अर्चन करने में चित्त को स्थिर करना होता है, मानसिक स्थिति शांत हो, शुद्ध कोई चीज हो, शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध रूप में और सब चीजें, आजकल कली काल में न तो शुद्ध घी मिलेगा न कोई और चीज मिलेगी, कर्म से किस संभव है, इसलिए कर्म तक अर्चन भी बंद हो जाएगा, विधर्मी लोग इसको गड़बड़ कर देंगे, इसलिए हरिनाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, महाप्रभु जी ने इसी का प्रचार। हम थोड़ा सा गीता के ऊपर में लेते हैं, गीता के संबंध में अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं थे, अर्जुन पूर्ण रूप से मुक्त जीव भगवान के परिकर थे, ऐसा मत समझिए कि अर्जुन को उपदेश देने के लिए गीता है, अर्जुन को तो माध्यम बनाया गया, सर्व उपनिषद हो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पाठ्य भक्त सुधीर भक्ता गीता अमृतम महत्, इसका अर्थ ये उपनिषदों का है, ये श्लोक जो कह रहा हूं उपनिषदों का है, इसमें बतला रहे हैं
सर्वोपनिषद उपनिषद और गाय
वेद है, ये गाय का रूप है। सर्व उपनिषद गायो दुग्धा, गाय को दुहने वाले कौन है? कृष्ण है। उपनिषदों का सार जीवों के लिए जो अमृत है उसका गाय रूप उपनिषद से कृष्ण दोहन कर रहे हैं। अपने लिए ग्वाला अपने लिए दूध निकालता है न किसके लिए? दूसरों के लिए। दूसरा है गुह्य उपदेश, तीसरा है गुह्य सर उपदेश, और है एक गुह्य तम उपदेश, और एक है सर्व गुह्य तम उपदेश। जो लोग गीता पढ़े होंगे ये शब्द उसमें लिखे गए, साधारण तो नहीं लिखा गया, गुह्य उपदेश लिखा। एक गुह्य सर और सर्व गुह्य तम, साधारण उपदेश तो ये है। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं मैं भीख मांग करके भी अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु अपने सगे संबंधी बंधुओं को मारने के लिए तैयार नहीं। मैं विषम पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, अपने भाई दुर्योधन को, अपने साला को, अपने मामा को, शल्य को सामने युद्ध में देख रहा हूँ। एक तुच्छ अर्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, राज्य के लिए मैं इन संबंधी और कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता। यदि भीख मांग करके मुझे रहना पड़े तभी अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए तैयार हूँ, इनको नहीं मालूम। साधारण दृष्टि से ये बुरा क्या उन्होंने कहा? ठीक ही तो कहा ना, दो चार पैसे के लिए, राज्य के लिए किसी का वध करना उचित है? वहां पर तलाखों लोग खड़े हैं मरने जीने के लिए। तो ये अर्जुन अपनी दृष्टि में ठीक ही कह रहे हैं और लोगों की दृष्टि में भी ठीक कह रहे हैं। कृष्ण ने कहा उनसे, अरे तू मूर्ख तो होकर बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहा है क्या? श्लोक ये उपदेश पहला यही से आरंभ होता है। तुम अपने को बुद्धिमान परम पंडित समझता है किंतु है तो मूर्ख ही आती। क्यों? जो चले गए हैं या जो चले जाएंगे उनके लिए शोक तू करता है? तुम्हारे शोक करने से ही क्या आना जाना लोगों का बंद हो जाएगा? मरना तो भाई बंद नहीं होगा। गता तू, जो चले गए हैं और अभी जो चले जाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग जाते रहेंगे या धारा प्रवाह कभी रुकेगा नहीं, तू समझता है उसके लिए शो करता है, तू उसका मालिक है, तुमने उन लोगों को बनाया और तुमको उनके लिए चिंता है, भरण पोषण तू सबका कर रहा है, न कि ये सबको सृष्टि करने वाला और पालन करने वाला कोई दूसरा है। कौन है वो? है तो तू, किंतु ही कारण जो परमेश्वर है, ईश्वर है, तू उसके लिए शो करता है। देखो आप गुप्त बात बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? आत्मा और भाव अनात्मा की बात। पंचा से जीर्णानी जथा विहाय नामानि गृहणाति नरोपराणि तथा जीर्णान्यानि संजात नमान देहि। कहते हैं तुम ये समझते हो कि इसको मार देने से वो मर गया, इसको छोड़ देने से वो रह गया। शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है भाई, इसमें एक आत्मा है ना? और शरीर के मरने से और नहीं मरने से उसका कोई भी संबंध नहीं है। तू समझता है जो शरीर को मार दिया तो आत्मा भी मर गई, यह बात संपूर्ण गलत। आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? वंशास जीर्णानी जथा भी, जैसे फटे कपड़े हैं उसको आदमी छोड़ देता है और नया पहन लेता है, ऐसे ही मरते समय इस शरीर से उसका वियोग होना ही मरना है, उस शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा जो पुराने कपड़े फटे हुए को मर ले, मैले और गंदे कपड़ों को छोड़ करके नया पहनने में उसको कष्ट होता हो तो बड़ा आनंद होता है। हाँ, छोटा सा बच्चा है अभी 10-15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 1 वर्ष का, उस बच्चे के कपड़े को निकालो तो वो रोएगा और नया पहनाओ तो भी रोएगा, वो जानता नहीं है ना, उसको कष्ट होता है। मैया रोते हुए रोएगा तो रोते हुए भी उसको कपड़ा पहना देती है और पुराना कपड़ा निकाल लेती है, पैंट इधर से सरका लेती है और वो रोता है फिर उसके बाद में चुप हो जाएगा। ये मूर्ख लोग ऐसे हैं। इसलिए ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर से वियोग होने का नाम मरण है और आत्मा से शरीर को मिल कोई न्याय मिलना ये क्या, ये तो खुशी की बात है न्याय मिल गया, किंतु आदमी शोक करते हैं, तू ऐसे ही शोक करता है, आत्मा अजर है। प्लेन से गंती शास्त्रांड नई नंग दहाती पाव का न कैन क्लेता को नशे अति मारू कर। शास्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, बंदूक रिवॉल्वर या तलवार इत्यादि के द्वारा, बम के द्वारा भाई आत्मा को नहीं काटा जा सकता, स्पर्श ही नहीं होगा, शरीर को काटा जा सकता है, ये तो मिट्टी है, फिर मिट्टी में मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, पांचों तत्व एलिमेंट्स हैं, ये पांचों पांचों में अंत में मिल ही जाएंगे। चित जल पाव गगन समीरा पंच रचित यह प्रथम, ये पांच तत्वों का ये हो जाएगा। इसको न तो शस्त्र छू सकते हैं, न हवा इसको सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसको भ्रष्ट कर सकता है, ये बिना इसके उसकी स्थिति है। इसलिए भाई इसको तो कोई मार नहीं सकता, इसका कंट्रोलर कौन है, वो प्रथम एक मान दूसरा इसका कंट्रोलर नहीं है, इसलिए तुम इसके मारने से शोक मत करो और इसके जन्मने से भी खूब कोई आनंद की बात, वो तो सब में उसकी स्थिति, ये शरीर के मरने से या जीना रहने से भी इसकी स्थिति नित्य काल है, किसी न किसी रूप में ये रहेगा, बिना शरीर का भी रह सकता। जैसे नारद जी का शरीर देखने में तो हमारे जैसे मालूम होता है, कृष्ण का शरीर ये हमारे जैसा दिखने में लगता है, किंतु हमारे जैसा वो नहीं है, वो चिन्मय शरीर है, वो मरेगा नहीं। प्रहलाद महाराज जी को भेज दिया गया, आग में जला गया, मरे क्यों नहीं, उनका शरीर ऐसा था नहीं। हनुमान जी मरेंगे नहीं, उनका शरीर ही कुछ दूसरे तरह का है, चेतन है, इसलिए वो मरेंगे। इसलिए तुम इसके लिए चिंता अधिक मत। ऐसे जो उपदेश हैं और इसके बाद का उपदेश दिया, जो लोग आत्मा और अनात्मा के विषय में पंडित हैं, जानते हैं अनुभव से, जो लोग इसके लिए दुख सुख के से प्रभावित नहीं होते, सब समय शांत प्रशांत बने रहते हैं, वे लोग गीता के द्वितीय अध्याय के अंत में ये बतलाया गया है, वो लोग यथार्थ में बुद्धिमान है। जो लोग सुख और दुख को एक ही पलवे पर वजन करते हैं, न सुख से खूब अत्यंत सुखी होते हैं, न दुख से घबराते हैं, इनसे उनका कोई तात्, जैसे कछुआ है कभी अपने अंगों को निकाल देता है ने? और फिर कभी अपने अंगों को अपने में सीमित लेता है, ऐसे ये बुद्धिमान पुरुष सुख और दुख दोनों को ही बराबर समझ करके आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, ये लोग योगारूढ़ ये उससे श्रेष्ठ। इसके बाद ही बतलाते यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकाय मत अन्यत्र कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन से मुक्त संग समाज,
बिना कर्म के एक भी व्यक्ति कभी भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म करना अपरिहार्य है। बिना सांस लिए रहने सकते, ये भी बिना सोए हुए नहीं रह सकता, बिना खाए हुए, ये भी कर्म है। इसलिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं सब कर्म करें? क्यों सब कर्म करने से भी नहीं होगा? कर्ण कैसा सब कर्मी था? बहुत सब कर्मी था, वो साधारण नहीं था, सूर्य का अवतार था, वैसा सब कर्मी था। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें वो घायल हो गया और मरने जा रहा है, अर्जुन ने उन्हें मारा था। वो रात हो गई और उस समय में वो प्रतीक्षा कर रहा है जब मेरी मुक्ति होगी, और जीत और त्याग वहां पर घेर रहे हैं, वो गदा उठा करके और ऐसे ऐसे करके अपनी रक्षा कर रहा है। जब तक प्राण निकल जाए तब तक ये लोग आंख न निकालें और तब गड़बड़ न करें, इसलिए अपनी रक्षा कर। इतने में रात में एक ब्राह्मण आया, बोला इसे आप कर्ण है अतः मैं कर्ण हूं, तो क्या चाहिए आपको? आपसे कुछ लेने के लिए आया है। तो मरने के समय हमारे पास तो देने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो नहीं महाराज, मैं युधिष्ठिर के पास में गया था, मेरी लड़की की शादी है, कुछ रुपए या स्वर्ण या अर्थ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध भूमि में हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहां से दूं? मैं आपके पास में आया दौड़ा हुआ, अब तो मरने वाले ही हैं, आप बड़े दानी हैं, आप मेरी सहायता करिए मेरी लड़की की शादी। तुम्हें क्या, मेरे पास तो यहाँ पर कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारा जो आपके पास में है क्या है बतलाओ? आपका दांत दो तीन टूट गया था, वो सोने से बंधा हुआ है और उसमें मणियां लगी हुई, आप ये दान देंगे तो इसी से ही हमारी लड़की की शादी। ठीक है, बहुत अच्छा, बस गदा दिया और ऐसे मारा, टूट गया दोनों से। देखो कि कैसा दयालु और कैसा दानी, ऐसा दानी कि इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए उसके कवच और कुंडल को मांगने आए, और कवच कुंडल उनके जन्म से उनके छाती की हड्डियों से एकदम लगा हुआ था, और कुंडल कांस के साथ में जन्मा था, उसको काट करके नहीं दिया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता। इंद्र मांगने के लिए आए ब्राह्मण के वेश में, तो उनसे आप क्या चाहते हैं? तो हम अपना कवच और कुंडल दे दीजिए। जब तक हो रहा था तब तक अर्जुन नहीं मार सकते थे। उन्होंने कहा कर्ण ने, ठीक है मैं देता, ऐसा कह करके अपने कान को काट दिया और छाती को चीर कर तलवार से चिपचिप करके और हड्डियों से उसको अलग करके और जमीन पर लेकर के चलने लगे, तुम कारक विमान ऊपर नहीं गया, उड़े ही नहीं, कह मैंने पाप किया। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा जे और कुछ मांगना है मुझसे? तो कहिए क्या मांगते हैं? तो ये मांगता हूँ कि आप उनसे पूछ लीजिए, कभी मेरा हाथ आज तक ऐसे नहीं हुआ, मैंने ऐसे नहीं हुआ, मेरा हाथ ऐसा रही देने का, मैं कुछ मांग नहीं सकता आपसे, मैं छत्री हूँ और दान देना मांगा कर्तव्य में ले लूंगा नहीं, मैं यही दान चाहता हूँ कि आप ले, नहीं तो मैं विमान से जान नहीं सकता। तब उन्होंने कहा तो आप अपनी शक्ति दे दीजिए, जो अब है जो एक बात छोड़े तो जरूर किसी को मार डाले। अंत में वही दे करके और उनसे ऐसा दान था वो जो पीछे से वो शक्ति भी निकल गई थी, किसी प्रकार से अर्जुन को बचा लिया या कृष्ण ने बचा दिया। तो ऐसा वो दानी व्यक्ति, सत्कर्मी व्यक्ति, किंतु भगवान और भक्तों का विरोधी होने से उसको अशुभ कहा गया। इसलिए सत्कर्म ही वो केवल नहीं है, इसलिए गीता ने कहा यज्ञा थाप कर्मणो लोकय मन कर्म मंदना तथेय मुक्त संग। यज्ञ के लिए कर्म करो, भगवान है यज्ञ, भगवान के लिए अर्पित होकर के करो, जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ पियो, जो कुछ चलो, वो सब कुछ लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित करो। यह है यज्ञार्थात का, इसलिए सत्कर्म भी हो और यदि भगवान के लिए अर्पित न हो तो वो कर्म कर्म नहीं है, निष्कर्म अपनी अच्युत वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम मिलन। निष्कर्म की जब शोभा नहीं पाती है तो साधारण कर्म तो तत्व में अभद्र की क्या शोभा है। इसलिए कर्म करना चाहिए और कर्म का फल भगवान को अर्पण कर दो तभी एक तरह से ठीक है। ये गुह्य तर्क देश किसी को नौ अध्याय ने बहुत अच्छी तरह से वो कहा गया। इसके बाद में आगे गुह्यतम उपदेश। गुह्यतम मैंने भगवान का भजन करना चाहिए। क्या संकीर्तन है और सब जो श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम इत्यादि का नौ भावक ये गुह्यतम उपदेश है। भक्तों के साथ में कीर्तन करना है, उनका अर्चन करना है, वंदना करना है, उनका शरणागत शो करके ये सब करना है तो ये गुह्यतम गुह्यतम। और सर्वगुह्यतम क्या है इसी को बतला रहे हैं। इसी पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर आया। वो क्या है
सर्वगुह्यतम
मन मना भव मद भक्तो मद यादि मांग नमस्कुरु माम एव एष्यसि सप्तम ते द्वियोति प्रिय प्रतिज्ञानो प्रिय। तुम हमारा अत्यंत प्रिय है इसलिए तुमको बतला रहा हूँ। क्या बतला रहा हूँ उसी के लिए बतला रहे हैं। इसमें चार प्रकार के अर्थ हैं, चार प्रकार के उपदेश हैं। एक तो है सर्वगुह्यतम, फिर गुह्य गुह्यतम, फिर गुह्यतर और अंत में गुह्य। पहला अर्थ लेते हैं क्या है मन मना भव। गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश ये मन मना भव किसको कहते हैं। मन से हमारे बन जाओ, अपना मन हमको तुम दे दो, अब तुम्हारा ये मन नहीं रह जाए, इसको कहते हैं मन मना भव। साधारण चीज नहीं है, बहुत असाधारण चीज। मन मना का ये तात्पर्य है कृष्ण उद्धव को भेज रहे हैं प्रश्न में, तो वो कह रहे हैं कि जाओ वृंदावन में गोपियों को देखना, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है और अपने मन को हमारे में लगा रखा है। देह और दैहिक जितनी प्रकार की चिंताएं हैं सब कुछ हमारे में लगा दिया है और हमारे लिए ऐसा दिया है कि हमारे बिना वो रह नहीं सकते। किसी चीज को बतलाने के लिए करें मन मना भव। मन मना कैसे कृष्ण मान लिया एक दिन गोचारण करने के लिए जा रहे नंद भवन से निकले, बच्चों को चरा रहे हैं। अब छोटे अभी बच्चे हैं किशोर, इसको चोर नहीं है। बच्चों को चराते निकलते समय ब्रज की गलियों में लाखों बछड़े चल रहे हैं, माताएं उनके साथ में चल रही हैं, नंद बाबा भी साथ हैं, कुछ दूर तक जाएंगे पहुंचाने। गोपियां कहीं छिपी भी देख रही हैं, अट्टालिकाओं पर चढ़ गई हैं, झरोखनी से देख रही हैं, कोई दरवाजे पर भी आ गई हैं, अकृष्ण को गोचारण करते हुए जाते हुए देख रहे हैं। कृष्ण बच्चों के साथ कुदकते हुए कभी बंसी बजाते हुए चल रहे हैं। एक घर में कोई नवेली आई है लड़की विवाहित होकर, उसने कहा कि कृष्ण जा रहे हैं गोचारण में, पद्धत तैयार होकर के वो जाने लगी। पास ही में सास बैठी थी, ननद भी बैठी थी, उन दोनों ने कहा कहाँ जा रही है, तो उसने कुछ कहा नहीं। मत जाना, जाएगी तो तुमको सांप काट लेगा और फिर तू बचेगी नहीं। तो उसने कहा कि जितने ब्रज के बूढ़े से लेकर के और नई लड़कियां हैं, विवाहिता स्त्रियां हैं, पौरु माताएं, सभी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या सब तुमको वो काट देगा सांप। तुम मत जाना, खबरदार, तुमको हम मना कर रहे हैं, तुम मत जाना। मानी नहीं, कहे तुम क्यों जा रही हो, तो हम जा रहे हैं, तुम मत जाओ। तुम उसकी बात नहीं मानी, तो भी आकर के दरवाजे के किनारे खड़ी हो गई, वो देखने लगी। कृष्ण बच्चों को लेते हुए चले जा रहे, देखा जैसे ये नई बड़ी उत्सुकता से हमको देखने के लिए आई, इसलिए एक बछड़े को बिछा दिया और बच्चा कूदता हुआ ठीक वैसे उसको किया जैसे ठीक उसके आस पास में आ गया बछड़ा कूदते हुए। कृष्ण भी जट उसके साथ ही साथ ही वहां पर पहुंचे, मानो बछड़े को पकड़ने के लिए आया, और जहां वो खड़ी थी उसके पास में आकर के अपनी बंसी ली और बंसी से उसके मुख में लगा दिया और उसके तरफ में हंस दे करके मुस्का दिया और फिर वहां से चले गए। बस उसका मन भी उसके साथ साथ में निकल करके कृष्ण के साथ में चला गया और वो खड़ी की खड़ी रह गई। मन उसका था वो कृष्ण के साथ में चला गया, कृष्ण तो चले गए आगे। जब तक कृष्ण को देखते रहे उनको देखते रही और फिर दरवाजे पर वो खड़ी की खड़ी रह गई। कृष्ण चले गए, बद्रे चले गए, सब लोग चले गए, सब लोग लौट गए। सास उसको पकड़ करके कहती है, कहा था ना अब तो तुम चेत चल घर। उसको पकड़ करके किसी प्रकार से घर में ले गई। देखा जिससे ये तो बावरी हो गई, मन तो इसका है नहीं, तो भाई अरे एक बात कर जरा दही ले आ तो, और दही लेकर के मक्खी से मक्त सा बदल जाएगा। तो वो दही के बदले घर में गई और राई की हड़िया उठा लाई और मथने देकर के वो उसको मथने लगी। सास ने देखा जी अभी इसका चित्त तंदुरुस्त नहीं हुआ, हड़िया ले ली और बोलिए देखो वो कुएं से पानी ला, चलने फिरने से जल्दी ठीक हो जाए। तो एक लड़का जो था घर में छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में दे दिया और एक घड़े को दे दिया यहाँ और उस घड़े के ऊपर में और एक घड़ा रख दिया और इस हाथ में छोटी सी बाल्टी दे दी और उस पर कुएं बड़े गहरे ब्रज के और मोटी रस्सी वो भी 10-5 किलो उसके हाथों में लटका दिया, सिर पर घड़ा रख दिया, उसके ऊपर एक और घड़ा रख दिया, जब होश नहीं रहेगी तो गिर पड़ेगा। बस वो तो अभ्यास उसका सबको लेकर के बच्चे को भी लेकर के ऐसे घड़े भी ले लिया, इस पर भी घड़ा लेकर के चल पड़ी। वहां कुएं पर गई, कुएं पर उसको सबको रख दिया, पानी लेना है वहां रस्सी रख दी, घड़ा भी रख दी। अब वो रख करके बच्चे को भी रख दिया और रस्सी का फंदा था ना उसको लेकर के घड़े में देना चाहिए, घड़े में न दे करके बच्चे के गले में लगा दिया। उसको याद ही नहीं, मन ही नहीं है ना, घड़े जो ही उसके गले में दी तो जो वहां पर गोपियां खड़ी है अरे देखो तो ये क्या कर रही, इसने कहा ये निश्चित इसको चुप लग गया। और दूसरी जो खड़ी थी जो जानती थी कृष्ण का चित्त कब हरण कर लेते हैं तो वो कहने लगी इसको भूत नहीं लगा, इसको नंद का पूत लगा। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सरस हैं, इतने प्रेमी हैं, जगत के प्रत्येक जीव एक बार भी उसको देख ले मुग्ध किए बिना छेड़ेंगे नहीं। इसको कहते हैं मन मना भव, गोपियां छेड़ेंगी थी इसलिए भूत मुख को रो रही, नंद बाबा रो रहे हैं उनके लिए, प्राण तोड़ रहे हैं, सारा ब्रज अनाथ हो गया है, गायें खाती नहीं है घास, बछड़े दूध नहीं पीते हैं, कोयल अब सुभक्ति नहीं है वृंदावन, मोर अब नाचे तनिए क्यों कृष्ण के बिना, वही तो ब्रज भूमि किंतु कृष्ण नहीं, इसलिए मन मना भव। कृष्ण के प्रति यदि प्रेम भक्ति है तो ऐसा ये गीता का उपदेश, मन मना भव ऐसा। अर्जुन ने कहा जी प्रभु इस युद्ध क्षेत्र में मैं मनमना भव ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो युद्ध रहने की और मारी काटा काटी ये करने का ये युद्ध है, इसलिए यहाँ पर तो ये सब संभव नहीं, प्रभु हमारे लिए कुछ नीचे उतर करके कुछ शिक्षा दीजिए। तब उसके लिए कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, हमने पहले 9वें अध्याय में जो वर्णन कराया हूँ मद भक्तो हमारा भक्त बनो, कैसा बड़ी भक्ति का साधक ये रागानुगा भक्ति अभी बतलाई और ये इससे उतर करके कुछ हुआ ये सर्वगुप्य समुपदेश और उसके नीचे ये गुप्यतर कुयतर में बतलाते हैं भगवान का भक्ति गुरु से दीक्षा लो,
संतों का संग करो, संभव है तो ब्रज में रहो, नहीं है तो घर में रहते हुए ब्रज में रहता हूँ, मन के द्वारा भी चिंतन करो कि मैं ब्रज में हूँ,
राधा कुंड में हूँ,
वृंदावन में हूँ, सेवा कुंड मन के द्वारा, यदि शरीर के द्वारा घर में बैठे रहो, मन में चिंता करो कि मैं वृंदावन में, हमारा मन शुद्ध है, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण हमारे प्रभु हूँ, जीव मात्र का स्वरूप है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ऐसे मन में समझो, समझो कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, और समझ करके अब तुम मन ही मन में उनकी सेवा, तुम श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन का अर्थ में तो प्रभु ये जीजू का क्षेत्र, यहाँ पर मैं ये सब चीजें श्रवण कीर्तन साधुओं के साथ में था बैठ करके कहाँ से सुनूंगा, ये समझ में कितने एकाग्र नहीं है, हमारे लिए कुछ और उपदेश कीजिए, मन मना भाव मद भक्तो मद याजी, याजी मने होता है अर्चन करना पूजन करना, हमारा पूजन करो, मन भी नहीं लगता है तभी पूजन करो, फिर तुम्हारा मन लग जाएगा, ये वैदिक भक्ति का अत्यंत निम्न सोपान है, जिसका हरिनाम में मन नहीं लग रहा है, जिसको हरि कथा में रुचि नहीं है, अच्छा तो भाई तुम ठाकुर जी का पूजा करो, घंटा ऐसा करो, उनके लिए भोग रंथन करो, उनके लिए स्नान कराओ, ये सब करो, धीरे 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 तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, इधर में रुचि आ जाएगी, उन्होंने कहा जी प्रभु अर्चन करूं, यहाँ पर ठाकुर कहाँ से ले आऊं, पानी कहाँ से ले आऊं, फूल कहाँ से ले आऊं, ये सब संभव नहीं, इसलिए और कुछ नीचे उतर करके करिए, तब वो कहते मद याजी मांग नमस्कार, एक बार तुम हमको प्रणाम कर दो बस इसी से हो जाएगा, तुम युद्ध करो शरीर से युद्ध करो और वाणी से हमको प्रणाम कर दो, हाँ जोर करके और खड़े हो जाओ, बस इसी से ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, ये है सबसे निम्न मार्ग, ऐसा किसी भी धर्म में ऐसा नहीं, आपको कहीं कहीं पर देखेंगे 10 बार उठना पड़ता है नमाज, 10 बार का कितनी बार उठना पड़ता है, उसमें परिश्रम होता है, और सब धर्मों में भी ऐसी बात है, हमारा एक ऐसा ही हिंदू धर्म है कि इसमें केवल प्रभु को स्मरण कर दो, हाथ ऐसा चीज न करके, यदि हाथ भी ऐसा करके यदि कर दो तो भी हो जाएगा, दंडवत प्रणाम करने की भी जरूरत, आपके लिए नमस्कार, एक बार भी नमस्कार करने वाले व्यक्ति को संसार में पुनर्आगमन नहीं होगा, भले उसको आ जाएगा फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा, दानी को भी आ जाएगा और जोगी को भी हो जाएगा, किंतु हमारा नाम लेने वाला अजामिल और सबसे देखो उदाहरण हमारे वाल्मीकि जी का, कितने पापी तापी और कभी उनको कोई नरक न कोई कर्म का फल भोगी, नाम एक ऐसा सुंदर है, उनका प्रणाम एक ऐसा है, जो लोग भगवान को प्रणाम करते हैं एक बार भी मंदिर में, क्या मंदिर नहीं है तो भी वहीं पर ऐसे भी कोई ठाकुर जी को ऐसे हे कृष्ण आपके लिए नमस्कार, कृष्ण उसको सब प्रकार के भयों से दूर कर देते हैं, उसको संसार से मुक्ति दे देते हैं, उसका सर्वस्व उसको दे देते हैं, अर्जुन ने कहा जिसने कहिए हमसे होगा, बस कृष्ण को नमस्कार किया, कहा मुझे क्या करना चाहिए, मन से चिंता करो मेरी और हाथ से युद्ध करो, अत्ताइयों का वध करना ही तुम्हारे लिए उचित है, इनका वध करके भी किसी को नहीं वध कर सकता, अर्जुन ने कहा ये कैसे देखेगा तो हाँ देखूंगा, बस उन्होंने मुख फड़ा और विश्व रूप दिखाया, उसमें देखा क्या करोड़ों आदमी एक लाइन से भीष्म पितामह कर्ण दुर्योधन इत्यादि सभी और जितने भी राजा राजन्य वर्ग है कृष्ण के दांतों के तले मरे हुए पड़े हुए हैं, देखा नए नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्मा शंकर इत्यादि सभी आ रहे हैं और जा रहे हैं, देख करके ये समझ तब उनको विश्वास है नहीं कृष्ण ने सबको मार रखा है और कहे निमित्त मात्र भव शब्द है निमित्त मात्र भव सबको तो मैंने मार रखा है तुमको मारना नहीं है, कृष्ण ही जी को जन्म देते हैं किसी को रक्षा करते हैं किसी को मारते हैं और कोई दूसरा नहीं, तब अर्जुन उनके कहने से जग युद्ध के लिए तैयार हो गए और जगत के लिए ये अमृत परोस दिया गया सोने के थाल में
सर्व धर्मान प्रत्यज्ञ माम एकम शरणम ब्रज और जगत का इसी से कर जाए। ये प्रारंभ है। और जिस भागवत जो है वो पीएचडी देव इसकी पुस्तक गीता समाप्त होने के बाद में सब भागवत में प्रारंभ रूप में हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। इसके संबंध में यदि होगा तो कल हम इसे तक लाएंगे। आज यही तक रहे। आप लोग खूब प्रेम से हरि नाम करें, कैसा भी अपना कर्मों को करेंगे और चलते फिरते उठते बैठते सफा नहीं है तो भी नाम करेंगे, कृष्ण की दया से। इसके अतिरिक्त हमारे कर्म नहीं सुधर सकते। इसी से सुख और शांति मिलेगी, इसी से सर्वस्व प्राप्ति होगी, हृदय की अस्थिरता भी चली जाएगी, जगत का विश्व का भी इसी से कल्याण होगा और दूसरे किसी उपाय से भी नहीं हो सकता। एक दिन आएगा जब विश्व में सर्वत्र ही ये नाम कीर्तन जैसा भी प्रचार हो रहा है, धीरे 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 एकमात्र धर्म रहेगा, वही रहेगा सनातन नित्य धर्म, भगवान के प्रति शरणागति उनका नाम, बस यही एक धर्म रह जाएगा और बाकी सब धर्म धीरे 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 सब लुप्त हो जाए। ये महापुरुषों की वाणियां है और ऐसे ही धीरे धीरे होगा। आजकल कम्युनिस्ट कंट्री भी धीरे 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 इसी की तरफ में बढ़, इसी से अहिंसा दूर होगी, देश विदेश और जीव मात्र का इसी से कल्याण। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहेंगे जिस रूप में रहेंगे खाने पर थोड़ा सा विचार जरूर रखें, अहिंसा न हो, हिंसा न हो और ऐसी चीजों को ग्रहण करते हुए, क्योंकि इससे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो कुछ खाते हैं वो पैखाना और पेशाब के रूप में गंदा चीज निकल जाता है, जो रह जाता है उससे रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, उससे मेद मज्जा इत्यादि बनता है, उसी से फिर मन बनता है। जैसा खाएंगे वैसा ही मन होगा। यदि फिर बकरी का मांस खाएंगे तो वैसे ही दुर्बुद्धि होगी, प्याज लहसुन खाएंगे तामसिक बुद्धि वहां पर हो जाएगी, मन हो जाएगा। और सात्विक चीजें यदि ग्रहण करेंगे भगवान को देकर के तो सात्विक बुद्धि होगी, आप में कोई पाप करने की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी। इसलिए अच्छी चीजों का भगवान को भोग देकर के स्मरण करके और आप लोग ग्रहण करेंगे, बुद्धि भी ठीक रहेगी, भगवान का भजन भी हो जाएगा, मनुष्य जन्म इस प्रकार से थोड़ा कीर्तन कर दीजिए आप तो जैसा करते हैं।
प्रश्न
है,
आपने प्रेम कुछ सही करना चाहिए जीव के लिए, जीव के तो
प्रेम मैं
दया दया और मित्र मैत्री दोनों ही करते हैं, कृष्ण कहाँ निवास करते हैं, कृष्ण कहाँ है,
कृष्ण कहाँ है,
ईश्वर स्वरूप बताना मेरे को।
उसमें रहने पर भी जीव और कृष्ण अलग ही, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम होगा।
भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान उसके हृदय में रहते
हैं। प्रेम भगवान से क्यों करना चाहिए, जीव के प्रति क्यों नहीं होना चाहिए। प्रेम एक अखंड चीज है, हम जीव भगवान के अंश हैं, इनके दास हैं। प्रेम जीव के प्रति नहीं हो सकता। हमारे समस्त शास्त्रों में ऐसी बातें आई, क्यों कृष्ण स्वयं प्रेम है और वो अखंड प्रेम है, रसो वैसह, इसलिए जीव का उस प्रेम करना माने कृष्ण से प्रेम करना, माने वो प्रेम कृष्ण से ही डाल दिया। जीव उनका अंश है इसलिए उसके प्रति मैत्री होगा। जैसे माता पिता के प्रति हमारा जैसा भाव है, भाई के प्रति बराबरी का भाव होगा, उनके प्रति पूज्य बुद्धि रहती है, ऐसे ही समस्त पूज्यों के जो पूज्य है कृष्ण, उनके प्रति ही प्रेम होगा। प्रेम कहते हैं संपूर्ण रूप से सेवा, अब अपना कुछ नहीं रह जाए, अकृष्ण उसको ग्रहण कर, जीव ग्रहण नहीं कर, जीव के प्रति संपूर्ण उसकी सरेंडर होना, ये समझ। गुरु के प्रति होगा तो गुरु भी भगवान भगवान ही है, इसे उनके प्रति सरेंडर हो सकते हैं,
किंतु वो भी सरेंडर किसलिए, तो कृष्ण के चरणों में हमें सरेंडर कराते हैं। इसलिए जीव प्रेम स्वरूप नहीं है, इसलिए जीव का प्रेम भगवान के ही साथ होगा, जीव के साथ कराते वो मैत्री भावना रहे। और जो कुछ नहीं जानते हैं उनके प्रति दया रहे, दया करके तो धीरे धीरे भगवान के चरण में।
और
जैनी लोग मार करके नहीं खाते, किंतु मरे हुए को खाते हैं। और वो ऐसे खाते हैं जैसे एक आदमी गरीब है, उसको पैसा देगा, कहे तुम्हें हम रात भर के लिए 50 रुपया देते हैं और तुमको इस खाट में बांध देते हैं रात भर के, जिसमें खटमल भरे पड़े हैं, और इस तरह से उनको खिलाते हैं। उनको गाय मर गई या कुछ मर गया, उसके मांस खाने में दोष नहीं है, मार खा करके खाने में दोष है। इसलिए मरवा करके खा सकते हैं, किंतु खाए तो इसलिए वो सुख नहीं। इसे करके कोई भी चीज खाया जाए, जब तक भगवान को अर्पित न किया जाए कोई चीज, तब तक वो चीज सिद्ध ही नहीं होती, चाहे वो सात्विक भी हो, चाहे तामसिक हो, चाहे बुरी हो। और भगवान को कोई चीज बुरी अर्पित की ही नहीं जाती, विधि नहीं, इसलिए भगवान को सात्विक चीजें दी जाती है, उनको ग्रहण करने से ही मनुष्य केवल सात्विक चीजें खाने से नहीं होगा। भगवान को तो मानते नहीं।
एक मेरे मन हरी अति विश्वास राम से अधिक राम देता तो कृष्ण से लो अधिक मुझे
इसी से ये कहा गया कृष्ण से नहीं, इसलिए कि कृष्ण के प्रति वो कृष्ण प्रेम को दे रहे हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम होने के लिए दास माने मान लो कि वो दास तो हम जिसको समझ रहे हैं अपने गुरु जी को भगवान का सबसे बड़ा दास मानते हैं, तो भगवान से अधिक समझते हैं, किंतु वो गुरु क्या करता है, उन्हीं की तो सेवा करता है, इसलिए गुरु है। यदि वो गुरु भगवान की सेवा नहीं करता, उनके प्रति प्रेम नहीं करता, तो उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए प्रेम किसी जीव के प्रति, गुरु के प्रति भी सेवा और श्रद्धा है। भगवत बुद्धि के लिए भगवान को दिलाने वाले हैं, इसलिए हमारे सबसे बड़े। भगवान तो पीछे मिलेंगे, अभी तो गुरु जी दिला रहे हैं, इसलिए गुरु जी।